कृष्णप्रियावरियसि प्रेमभक्ति प्रदेवी राधिकेतांग नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वंदे नंद ब्रजेस्त्रीनां पादरणमभीक्ष्णस जसां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन करणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वभीष्ट प्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी उज्जेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवी गण की जय। जय कार्तिक व्रत नियम सेवा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। कच्चातुर्मास व्रत की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदी आज महाप्रभु के परिकर नरोत्तम ठाकुर जी के शुभ आविर्भाव तिरुभाव तिथि और भक्ति कुशल नरसिंह महाराज के भी प्रभुपाद पार्षद उनके तिरुभाव तिथि है। तो वैष्णव के गुरुवर्गों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि आने पर उनका गुण कीर्तन श्रवण और कीर्तन करना महाप्रभु के कृपा प्राप्त जो उनके परिकर हैं उनके सानिध्य में और उनके निजजनों के कृपा भाजन होने की संभावना है यदि श्रद्धा के साथ कोई श्रवण कीर्तन करे। यही भगवत प्रसाद है। वैष्णव के गुणगान वैष्णवीर गुणगान कर ले जीवर त्राण। जीव के उद्धार के लिए भक्तों के गुणगान ही सर्वश्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में शुरू से लेके केवल भक्तों के महिमा और गुणगान ही कीर्तन करा और महाराज परीक्षित को सुनाया। इसलिए कहते हैं जी भक्तों के गुणगान कीर्तन करना श्रवण करना एकमात्र श्रद्धा भी बीजी वपन करना है। तो अभी नरोत्तम ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ स्मरण करने की उनके गुणावलियों को। कहते हैं जब सरल गोस्वामी ब्रज में आए महाप्रभु की इच्छा से तो लुप्त तीर्थों का उद्धार भी किया और बहुत ग्रंथ प्रणयन किया। क्योंकि पहले हम लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक था तो उसमें ऐसा किया कि 5,000 श्लोक उठा करके फेंक दिया। काल के प्रभाव से वो खा गया सब। क्योंकि सब भक्तों की महिमा है कीर्तन किंतु जहाँ ब्रजलीला आया और ब्रजदेवियों की महिमा वहाँ पर इन लोगों ने उसको प्रक्षिप्त कह करके उसको उड़ा दिया। अब 13,000 कुछ श्लोक है किंतु भागवत में है 18,000 श्लोक। हाँ सब वर्णन दिया। तो अब महाप्रभु जी ने कहा जब सब भक्तों की यहाँ तक हनुमान जी से लेके प्रहलाद महाराज सब भक्तों के वर्णन है किंतु जो ब्रज के परिकर हैं ब्रजदेवी यहाँ उनका वर्णन नहीं है बड़ा संक्षेप में। यहाँ तो कि राधारानी का नाम भी नहीं है। पूरा भागवत ढूंढने पर मिलेगा ही नहीं। तो ये जीवों के उद्धार कैसे होगा? शक्ति शक्तिमतो और अभेद हो, आग है तो उसके दाई का शक्ति या उनके ताप है, सूर्य है तो उसके रोशनी है, तो भगवान है तो भगवान की शक्ति भी है, तो उनका वर्णन क्यों नहीं है? तो जब तक ये कीर्तन नहीं करेगा, वर्णन नहीं करेगा, और जीवों के कल्याण के लिए कोई मार्ग नहीं है। जहाँ राधा नाम आधार जीवन धन, राधा नाम ही एकमात्र जीवों के आधार है, वो नाम ही नहीं है, कीर्तन ही नहीं है, उनका गुण महिमा ही नहीं है। और जो ब्रजदेवियाँ हैं जिनको लेकर के प्रभु की इतना लीलाएँ और प्रभु जगत में आए और दिखाया कि इनकी महिमा कैसा है, किंतु वो स्पर्श मात्र में नहीं रहा, सब कहाँ फेंक दिया। और विशेषकर कलयुग आया तो यदि किसी ने सुन लिया रासलीला नाम, सुन लिया वस्त्रण चिरहरण आदि, तो उनका आग लग जाएगी, बोले ये सब प्रक्षिप्त है, भगवान द्वारकाधीश है, ये सबसे बढ़िया है और गीता का उपदेश सर्वश्रेष्ठ है, इसमें निर्मल ज्ञान है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, वैराग्य है, ये सब कह करके लोगों को वंचित करना शुरू कर दिया। महाप्रभु बोलते हैं यदि ये ब्रजलीला का कीर्तन नहीं किया तो जीवों के कल्याण का कोई और मार्ग ही नहीं है। तो इससे गोस्वामियों को ब्रज में भेजा, जाओ ब्रज में जाके लीला स्थानों को प्रकट करो और विशेष करके ब्रज देवियों की महिमा का कीर्तन करो। उद्धव संदेश में थोड़ा बहुत उद्धव जी आए तो कृष्ण के मनोभीष्ट जान करके ब्रजदेवियों की महिमा का थोड़ा बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने नाम उल्लेख नहीं की। कौन सर्वश्रेष्ठ है, उद्धव गैरी में कौन विराजमान है, कौन सब समय कृष्ण के भाव में आविष्ट है, तन्मय है, कृष्ण कहाँ विराजमान है, ये सब कीर्तन नहीं है। नंद बाबा जसोदा का कुछ गुण महिमा, सुवल सिद्धाम के नाम भी आया, कुछ आया, किंतु ये सब गोपन कर दिया। तो महाप्रभु जी आने के बाद महाप्रभु जी ने भेजा, गोस्वामियों ने बहुत प्रयत्न करके उज्जवल नीलमणि, भक्त श्याम सिंधु, बृहद भागवतामृतम, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों को प्रकाश किया। और महाप्रभु ने कहा जो कुछ प्रकाश करोगे प्रमाण के साथ, यह नहीं कि मनमानी गल्प गुजब, नहीं, पूरा प्रमाण देना है शास्त्रों का। तो महाप्रभु ने सब सुनाया, प्रयागराज में रूप गोस्वामी को 10 दिन तक भक्तिरस का आस्वादन कराया, इसके बाद 2 महीना वाराणसी में सनातन गोस्वामी को संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व का शिक्षा दी, इसके बाद रूप गोस्वामी 10 महीना पुरी में जाकर के महाप्रभुवास रहे, सनातन गोस्वामी जो गए वो भी 10 महीना रहे। महाप्रभु जी ने समस्त उचित शिक्षाएं दी, किंतु आकर के इन लोगों ने यथाथ रूप में प्रकाशन किया, किंतु इसका प्रचार कौन करेगा? जैसे भागवत का आविर्भाव हुआ तो वैष्णव जी पहले शिष्य बनाए, जैमिनी वैशंपायन पहला सुमंत 4 शिष्य बना करके 4 वेदों को विभाग करके प्रचार करने के लिए दे दिया, उसमें कि विभिन्न शाखा उपशाखा उन लोगों ने शिष्य उपशिष्य को देकर के प्रचार किया। जब भागवत आविर्भूत हुए उस समय उनके अंदर चिंता हो गया, अब कौन योग्य व्यक्ति मिलेगा, कौन प्रचार करेगा? पहले तो मैंने धर्म अर्थ काम मुख्य के प्रचार के लिए व्यवस्था बनाई, ये प्रेम प्रयोजन और पंचम पुरुषार्थ तो ये कौन प्रचार करेगा? तब भगवत इच्छा से भगवान के लीला सुख उनके पास आविर्भूत होकर के फिर सारा जगत भर में प्रचार किया। सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को शक्ति संचार कर दी, सुत गोस्वामी ने नारद जी ने वैष्णदेव को दिया, वैष्णदेव जी ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने सुत गोस्वामी को दिया, धीरे धीरे परंपरा चलती है। किंतु क्या हुआ, भागवत के मूल जो वस्तु तत्व था सब छिपा दिया, और कहाँ कर दिया इसका अत पता नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने पुनः ये जो प्रयोजनीय तत्व प्रेम ही प्रयोजन है इस तत्व को प्रकाश करने के लिए आदेश दी। जब प्रकाशन हो गया तब इन लोग सोचने लगे अब प्रचार कौन करेगा, कैसे प्रचार, कौन कौन ऐसे योग्य व्यक्ति है। उस समय जीव गोस्वामी के निकट नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य ऐसे कुछ महाप्रभु के शक्ति समन्वित पार्षद आए। जीव गोस्वामी ने सर्ट संदर्भ पहले पढ़ाया, क्योंकि तत्वज्ञान नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता। इसे तत्व परमात्मा भगवत कृष्ण भक्ति प्रीति ये छह संदर्भों को अच्छी तरह से पढ़ाया। फिर रस तत्वों के ऊपर जितना ग्रंथ है सब उन लोगों को पढ़ाया। इधर गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिणाचार्य से महाप्रभु की इच्छा से आए तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने रसम ग्रंथ राधा रस दानी दी पद्यावली विभिन्न ग्रंथों का प्रकाश किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किस तरह से वैधि मार्ग से लेके राग मार्ग तक उपासना करना चाहिए, तिलक क्यों करे, कंठी क्यों पहने, शिखा क्यों रखे और नियम भक्ति के अंगों का पालन कैसे करे और क्या क्या अंग हैं, उन्होंने सब कुछ महाप्रभु की इच्छा से प्रकाशन किया। किंतु अपना नाम नहीं दिया, सनातन गोस्वामी को नाम देके प्रकाशन कराया। तो सब प्रकाशन तो हो गया, अब जब प्रचार करने की बात आई, वितरण करने की, तब आए नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य। किंतु जीव गोस्वामी ने शिक्षा तो दी, दीक्षा नहीं दी। जीव गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ दास गोस्वामी के पास भेजा और श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भेजा और श्यामानंद प्रभु ओ गोरदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य के निकट दीक्षित थे। हृदय चैतन्य ने प्रभु ने उन्होंने भेज दिया था जीव गोस्वामी के निकट ब्रज में कुछ शास्त्रों का अनुसरण करने के लिए, तत्व अनुसरण करने के लिए। अब नरोत्तम ठाकुर जब गुरुकरण करने के लिए गुरु के पास गए तो आजकल तो सस्ता हो गया ना, सस्ता हो गया तो खास्ता भी हो गया। 10-20-50 को भेड़िया चाल की तरह इकट्ठे करके ले जाओ, हाँ, गुरु घंटाल शिष्य चंडाल एक साथ में इकट्ठा कर बैठा दिया, मंत्र दे दिया, अब तुम जानो तुम्हारा मंत्र जाने, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा गुरुगिरी नहीं और ऐसा शिष्य नहीं था, बड़ा कठिन काम। ओ नरोत्तम ठाकुर गए तो लोकनाथ दास स्वामी बोले हम शिष्य टिष्य नहीं बनाते, हम खुद ही शिष्य नहीं हुए, भगवान की सेवा हमसे होता नहीं, हमारे स्मरण नहीं होता, हम शिष्य टिष्य नहीं बनाते, किसी तरह से स्वीकार नहीं की। किंतु जीव गोस्वामी ने भेजा, बोला नहीं सुनते, बोले ठीक, जब ज़्यादा अनुरोध किया, प्रार्थना किया तब बोले अच्छा मैं पूछूंगा, हमारा मालिक है, मालिकानी से पूछूंगा, यदि आदेश देंगे तो। हाँ, कहते आचार्य रामानुज दीक्षा के लिए 19 बार गए गुरु के निकट, वो टकराते रहे, आखिरी में उनको स्वीकार किया। प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर गुरुशिष्य ब्रजमोहन पास कितना चेष्टा किया, तो अब नरोत्तम ठाकुर देखा ये ऐसे तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो राधा पंकज पदांकित धाम वृंदावन जार नाम तहा जिन आश्रय कर लो, कहते राधारानी की पदांकित भूमि यह वृंदावन ब्रजधाम है, तो यदि धाम सेवा करेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने धाम सेवा शुरू कर दी, केवल परिक्रमा नहीं है, धाम का संस्कार करना साधारण व्यक्ति कार्य नहीं है, नाम कीर्तन करते और वैष्णव के चरण धूलि शरीर में अपना लगाते और प्रार्थना करते और धाम के सेवा में अपने को नियुक्त कर दिया तो 24 घंटा विश्राम नहीं, कैसे गुरु कृपा मिलेगा, बस अंतर में एक अभिलाषा। कहते हैं ବିନୁଗୁରି ଭବନିଧି ତରେନ କୋଇ ଯୋ ଶଙ୍କର ବିରିଞ୍ଚି ସମ ହୁଏ ଏ କଥା କେହେନେ ସେ ନେଇ ହୋତା ଗୁରୁକି ପ୍ରତି କେସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଗା କେସି ସେମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଙ୍ଗେ ତ ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁରଜୀ ନେ ଲଗାତାର ଏକ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ନେହିଁ ବହୁତ ସମୟ ତକ୍ ଧାମ ସେବା କି କେସି ସେବା କରତେ କିଛି ଦେଖା କରିକେ ନେଇ ଲୋକେ ସାମ୍ନେ ଢିଣ୍ଡୁରା ପିଟକେ କି ମୁଁ ଆଜ ରାଧାକୁଣ୍ଡକେ ସଫାଇ କରୁଙ୍ଗା ଆଜ ମାନସିକଙ୍କେ ସଂସ୍କାର ହୋଗା ଆଜ ସବ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦି ଇତନା ସାରା କଲେକ୍ଟ କରିଲିଆ ଦୌଲତ ଅର୍ ଅନୁଯାୟୀ ତ ହମ ଢିଣ୍ଡୁରା ପିଟତେ ଗାଜା ବାଜାକେ ସାଥ ତ ହମ ଯା ରହେ ଏ କୋଇ ସେବାକା ପରିପାଟି ନେଇ ହେ କହତେ ଭଜନ ଭୋଜନ ଅର୍ ସେବନ ଇଏ ତିନ ହେ ଅତି ଗୋପନ ଅବ ରାତ କୁ ଜବ ସବ ବିଶ୍ରାମ କରତେ କି ଧୂଲ ବି ଉଡ଼େ ନାହିଁ କିଛିକେ ଛୁଏ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସଡ଼କ ସାଫ କରତେ ଇହା ତ କି ଯାହା ଯାହା ପର ଖୁଲେ ମୈଦାନ ମେ ପେଲ ଲୋକ ଦିଶା ମୈଦାନ ଯାତେ ଥେ ଟଟି ଟଟି କରତେ ଥେ ଓ ସବକୁ ସାଫ କରିକି ଏକଦମ ଜଲ ସେ ଛିଡ଼କାଉ କରି ଗୋବର ସେ ଲିପୁତ କରିକି ସବ ସାଫ ସୁତୁରା କରିଦେତେ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖତେ ହେଁ ବହୁତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଯାତେ ହେଁ ସୋଚ କେ ଲିଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଫ କୁନ୍ କରତା ହେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବ ଛିଡ଼କାଉ କରିକି ସୁନ୍ଦର ସଫାଇ କରିକି କୁନ୍ ରଖତା ହେ ଏକ ଦିନ ଭଜନ କରେ ତ ସୁନ ରହେ କୋଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ରୋ ରହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଅର୍ ସେବା କରେ ତ ଆକରକେ ପୁଛେ ତୁମ କ'ଣ କିଏ ଏସବ କରତେ ହୋ ତ ଗୁରୁ କୃପା କଲି ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଅପଣାଏ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ତ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଦି ଦେନେକେ ବାଦ ଜବ ଦେଖା କି ଇନକେ ଅନ୍ଦର ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେ ଅର୍ ସବକେ ପ୍ରତି କୃପା କରେ କି ଅର୍ ସବକେ ଉପକାର କରେ କି ଇନକେ ଅନ୍ଦର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେ ତ ଉନ୍ନେ ଆଦେଶ ଦେ ଦିଆ ଯାଅ ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର ଆଏ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିକଟ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେ ଦିଆ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲେ ଦୁବାରା କପି କର ଲୋ ଲିଖିଲୁ ଆର୍ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମାଧି ଦେ ଦେଉ ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମାଧି ପୀଠକେ ସାତ ପାସ ମେଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକ ସମାଧି ହୁଏ ଅର୍ ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ହାତସେ ଦୁବାରା ଲିଖିଲିଆ ଅର୍ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ବାଦଶାହ ନେ ବୁଲାଇ ଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ଓ ଗଏ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛୋଡ଼କେ ଯାଉଙ୍ଗା ନାହିଁ ଫେର ବାଦଶାହ ବୃନ୍ଦାବନ ନେଇ ଆଏ ଡରକେ ମାରେ କି ଯଦି ଆଉଁ ତ ଇନ୍ ଲୋକେ ବୃନ୍ଦାବନକେ ମେଁ ଏସେ ଶକ୍ତି ହେ କି ସବକୁ ବାବାଜୀ ବନା ଦେତା ହେ ତ ମୁଁ ଆଉଁ ତ ବାବାଜୀ ବନ ଯାଉଁ ତ ଇସି ଓ ଆଗ୍ରା ହେ ତାଜମହଲ ମେ ଉହାଁ ବୁଲାଏ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଘୋଡ଼େକା ତାଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଦି ଦଶ ଦଶ କିଲୋମିଟର ମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମେ ବଲେଇ ଗଏ ତ ରାତକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ରହେ ନା ଆଏଙ୍ଗେ ସେବା ମେ ଆଏଙ୍ଗେ ତ ଗଏ ଉହାଁ ଝଗଡ଼ା ଶୁରୁ ହୁଆ ତା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ କି ଯମୁନା ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ଗଙ୍ଗାକେ ମହିମା ଅଧିକା ହେ କି ଯମୁନାଜୀ କି ପୂର୍ବୀ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଲୋକ ମେ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା ହେ ବାଦଶାହକେ ପାସ କୋଇ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଲଢ଼ାଇ ବହୁତ ଛିଡ଼ ଗଏ ତ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଲାଇ ଥା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଏ ତ ଉନ୍ନେ ଗଙ୍ଗାକେ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କିଆ ଯମୁନାଜୀ କା ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କିଆ ବୋଲେ ଅବା ଆପଲୋକ ବିଚାର କର ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ କି ଯମୁନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ମୁଁ ଇଏ ନେଇ କହି ସକତା ଉନ୍ନେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମହିମା ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଲେକେ ପ୍ରମାଣକେ ସାଥ ସବ ବୋଲ ଦିଆ ସବ ଶାନ୍ତ ହୋଗେ ତବ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋ ବାଦଶାହ ନେ ବୋଲେ ମୁଁ ଏକ ଆପକୁ ଉପହାର ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ ବୋଲେ ମୁଁ କୁଛ ଚାହିଏ ନାହିଁ ତ ଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶନ କରନେ କେ ଲିଏ ସବସେ ପହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ମେ ଇଏ କାଗଜ ପେପର କା ଓ ଛାପନା ଶୁରୁ ହୁଏ ତ ପେପର ପ୍ରକାଶନ ହୁଏ ପହିଲେ ଭୋଜପତ୍ର ମେ ଲିଖତେ ଥେ ବୈଷ୍ଣବାଦୀ ଆମର ଯେତେନେ ହେ ଉନ୍ନେ ଭୋଜପତ୍ର ମେ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲିଖା ଆଉ ଭୋଜପତ୍ର ବି ଉହାଁ ପର ପାହାଡ଼ ମେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ ହେ ହର ସାଲ ଓ ବାଣ୍ଡେଲ ବାଣ୍ଡେଲ ପତ୍ତା ଅପନା କାଗଜ ପେପର ଦେତେ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା वो पानी में गीला नहीं होता, सड़ते नहीं, और जो लिख दिया वो मिटता नहीं। तो किंतु जीव गोस्वामी को बादशाह ने पहले ये कागज़ दिया, वो पेपर लाया तो नरोत्तम ठाकुर जी ने और श्रीनिवास आचार्य श्यामानंदपुर और भी सब परिकरों ने उसको हाथ से दोबारा लिख करके हैं और उन लोगों ने प्रकाशन किया अपने पास, और जीव गोस्वामी ने मूल ग्रंथ रखा और सब चीज़ इन लोगों को दे दिया प्रचार करने के लिए। अब जब प्रचार शुरू हुआ है तो कैसे प्रचार करना होता है, जब तक कि नाम कीर्तन नहीं किया और गुरु के अनुगत्य में आश्रय नहीं लिया तब तो अपराकृत नामों का कीर्तन नहीं हो सकता और अपराकृत स्मरण नहीं होगा। तो अब नरोत्तम ठाकुर, श्रीमदाचार्य और श्यामानंद प्रभु इन तीनों ने समस्त शास्त्रों के निचोड़ लेके कीर्तन स्वरूप रचना की। नरोत्तम ठाकुर का मनोहर शाही और श्रीमदाचार्य का रेनेटी और श्यामानंद प्रभु का गरनहाटी, तीन प्रकार के स्वर ताल लय मान के साथ सब शास्त्रों को उन्होंने अपना कीर्तन के माध्यम से प्रकाशन कर दी और फिर प्रचार शुरू की। तो नरोत्तम ठाकुर प्रचार शुरू करने के पहले उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका एक ग्रंथ प्रकाशन की, उन्होंने उसमें सबसे पहले वंदना की श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म, गुरु के चरण कमल केवल भक्ति का आश्रय, यदि मुक्ति चाहिए या ज्ञान चाहिए कर्म चाहिए तो आप कर्मी ज्ञानी और योगियों के पास भले ही पहुँच सकते हैं, किंतु भक्ति चाहिए भगवान की प्रीति चाहिए तो आपको सद्गुरु का चरणाश्रय करना पड़ेगा। और गुरु का चरणाश्रय केवल मात्र कान फूकने के लिए नहीं, देखावा नहीं, एक दिन मंत्र ले ली गुरु से मतलब नहीं, हाँ अब फिर हम भी गुरु हो गए, गुरु से मंत्र लिया ना ओम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हो गया, तो आज तक मैं मंत्र ले ली अब मैं मंत्रदाता गुरु हो गया, गुरु ने गुरु के चरणाश्रय के तो मैं भी गुरु हो गया। क्यों, मास्टर छात्र नहीं बनाते, मास्टर मास्टर बनाते हैं, हैं पढ़ाया लिखाया तो मास्टर डिग्री हो जाता है ना, एम ए बी एस के बाद एम ए होता है ना तो मास्टर डिग्री है, तो वो भी गुरु ने अपनाया तो वो भी गुरु हो गया, यदि चेला हो गया तो चीला हो गया, बोले गुरु गोबर हो गया तो गुरु चेला चीला हो गया, तो अब वो खुद गुरु हो गया, ऐसा नहीं। उन्होंने इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में गुरु के महिमा, गुरु के वैशिष्ट्य, गुरु का भजन पहले नहीं करे तो भगवान का भजन तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। उन्होंने ये प्रमाण के साथ प्रकाशन किया कि प्रथम तो गुरुम पूज्येत ततस्यैव मम अर्चनम कुर्वम सिद्धि मम आप्नोति अन्यथा विफलम भवेत, यदि भजन करना है तो गुरु का अर्चन पूजा पहले करो, इसके बाद में गोविंद की पूजा हो सकता है। और यदि गुरु को त्याग करके लंग करके गोविंद की पूजा करने गया, गोविंद उनकी पूजा सेवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, संभव ही नहीं। तो उन्होंने गुरु की महिमा ऐसे प्रकाशन किया और गुरु की प्रतिष्ठा की, किंतु वहाँ ये भी दिखाया कि सद्गुरु कौन है और असद्गुरु कौन है, वहाँ बतलाया गुरु अवलिप्त कार्य कार्य मजानत उत्पत्त प्रतिपन्न्य परित्याग विधीयते, यदि गुरु को देखो भक्ति मार्ग छोड़ करके कर्म मार्ग में योग मार्ग में ज्ञान मार्ग में भाग रहा है और लोगों को व्यापार में लगा रहा है, हैं कहते हैं देखो मछली खाना नहीं किंतु मछली के व्यापार करने में क्या बुराई है, हैं और तुम भांग गांजा नहीं खाते कोई बात नहीं किंतु उसके व्यापार में बिजनेस में क्या रखा है, जुआ खेलने के लिए माना है शेयर मार्केट में जाना नहीं है किंतु वो पैसा बुरा थोड़ी है, वो तो भगवत सेवा में लगा सकते हैं, ऐसे ভক্তিম ঠাকুর লিখায় বলে যে কোনো এক ব্যবসা ধরি জীবন নির্বাহ করি মুখে বলো হরি হরি এই মাত্র ভিক্ষা চাই, জীবন নির্বাহ করলো কই বি ব্যাপার করকে। কিন্তু উনি বাদ মে লিখ দিয়া মাছের ব্যাপার নাহি করি, হ্যাঁ অর জুয়া সট্টা ইসমে নেই। তো চার যে নিয়ম হে ভাগবত মে বতলায়া আচার্য নে পালন কিয়া। অব ও নরোত্তম ঠাকুরজি গুরুকে যে চরণ কমল হে, হ্যাঁ কোন সদ্গুরু তো বতলায়া গুরু ভবসন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকা, দুর্লভ সদ্গুরু দেবী শিষ্য সন্তাপহারকা। বহু সারে গুরু মিলেঙ্গে, সাল মে আয়েঙ্গে দক্ষিণা লেনে কে লিয়ে আর পূজা করেঙ্গে আর ভান্ডারা করেঙ্গে আর চলে যায়ঙ্গে। শিষ্যকে বিত্ত হরণ করেনেওয়ালা, হ্যাঁ আর কিন্তু উনকে সন্তাপ দুঃখ দূর করেনেওয়ালা, অনর্থক দূর করনে কে লিয়ে নেই আতে, সামর্থ্যই নেই। উনকে চিত্তকে নির্মল করকে ভগবত বীজ অর্পিত কর দে, অভজন কি প্রবৃত্তি দে দে, ভগবানকে সাথে জোড় দে, এসা দুর্লভ সদ্গুরু। তো ও নরোত্তম ঠাকুর ব্যাখ্যা শুরু করে দি, অব ক্যা হুয়া মহাপ্রলয় মচ গিয়া, কীর্তন এসে করতে আর কীর্তন মে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্বকে সাথ প্রকট হয়ে যেত, আর ইধার রাধাকৃষ্ণ আপনি পরিকরকে সাথ কীর্তনে প্রকট হয়ে যেত। কতে যদি ভগবানকে লি কীর্তন কি আহ্বান কিয়া, তো ভগবান যদি নেই দর্শন দিয়া আয়ে নেই, তো তো কিসকা ভজন কিয়া, কিসকা কীর্তন কিয়া, সুসুন্দর কা চিক 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 কর না, এগো কীর্তন হে ইয়া মায়া কা, হ্যাঁ মহিলাও কো বাঁটনার উসকো লেকার কে কিছু উছালনা, এ কীর্তন নেই হে। কীর্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে সেকালে নির্জন ভজন সম্ভব, কীর্তন কিয়া তো কীর্তনকে দ্বারা কেউ স্মরণ হুগা আর একান্তিক রূপে ভগবত দর্শন ভগবত সান্নিধ্য লাভ হোগা। তো নরোত্তম ঠাকুর বলা দেখো ইয় আত্মা ভগবান কা হে, ইয় অর কিছু কা নেই হে। তো ইয় আত্মাকে দ্বারা পরমাত্মাকে সেবা করনা, উনকে গুণ কা কীর্তন করনা, গুণ কা শ্রবণ করনা, লীলাও কা কীর্তন করনা শ্রবণ করনা, ইসে ভগবানকে ভগবত প্রাপ্তি কে লিয়ে অর কই উপায় নেই হে। কিন্তু সদ্গুরুকে মাধ্যম সে জব গুরুবাণী হৃদয় মে আবির্ভূত হতা হয়, তো ও সবসে বড় সম্পত্তি হে ভগবানকে সেবা কে লিয়ে। উনি কীর্তন শুরু কি প্রচার শুরু কি এত আলোড়ন হো গিয়া, সারে ব্রাহ্মণ লোক বড় বড় লোক সব বিরোধী হো গিয়া। একদিন প্রচার কর রে থে, কীর্তন চল রা থা আর হরিকথা চল রা থা, তো গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী উসকে পিতাজি নে এ নবরাত্রি আয়া তো বেটাকে ভেজা বাজার মে, যাও বাজার মে যাও আর মাকে লিয়ে কিছু উপহার লানা হয়, বহু সারা পয়সা দে দিয়া জমিনদার হে, তো দে দিয়া তো ও লেকে বাজার গয়া, তো বহু সারে বকরা খরিদ লিয়া কিন্তু মাকে বলি চড়ানা হোগা। তো নরোত্তম ঠাকুর কথা কীর্তন চল রা থা, উনকে পরিকার লোক বলি আরে ইয়া ব্রাহ্মণ হে জনেউ হে, হ্যাঁ আর তিলক হে, তো আপ ই ক্যা কর রে, কাহা লে যা রে ইনকো খরিদকে, বলে আমার পিতাজি নে বহুত দৌলত দিয়া ইনকো লেকে যা রে মাকে লিয়ে উপহার হে, তো তোমার মা, তোমার মা ই বকরা খাতি হে তো উনকে উপহার দেনা হে, তুমি তো মাকে লিয়ে বহুত বড়া উপহার হো, আপনাকেও দে দো না, উন পশুকে কেউ দেতে হো, পশুকে দেনে সে কে হোগা, তুমি আপনাকেও দে দো। তো সাধু তো সাধু হতে ও পকড় লিয়া, বল তোমার কেসে মা হে রাক্ষসী হে, হ্যাঁ মাস খাতি হে খুন পিতি হে, তো এক মা কেসে হে, ও তো ডাইন হে রাক্ষসী হে, উনকো এতনা পড়ায়া এতনা সমঝায়া উনি সব বকরাকে ছোড় দি, আর ছোড় ছাড় করকে আর নরোত্তম ঠাকুরকে নিকট আয়া, কথা শুনে লাগে কীর্তন মে রম গে, বাপ বলে মেরে বেটা গয়া বাজার মে আয়া নেই সুবে সে শাম তক আপনি নোকর চাকর কো ভেজ দিয়া, জব আয়ে তো দেখা হো তো কীর্তন মে নাচ রা মতওয়ালা হো গিয়া ভুল গিয়া, তো উসকে পুছে চলো ঘর চলো তোমার পিতাজি বুলা রে, বলে ইয়ে তোমার ঘরে, বলি হোক তন্ত্রমন্ত্র কর দি জাদু কর দি,
हमारे बेटा को पागल बना दिया है, अब तो बेटा घर नहीं आएगा है। अब पिताजी आए बहुत सारे और बाप स्मार्ट तो ब्राह्मणों को लेके, अष्टमी पूजा है माँ के सामने बलि चढ़ाना है हैं। तो वो बेटा को बोला पैसे कहाँ है, बकरा कहाँ है, बोले मैं ही तो बकरा हूँ, बोले चढ़ाना है तो मुझे चढ़ा दो, मैं तो सबसे बड़ा उपहार हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ हाँ, तो तुम मुझे चढ़ा दो माँ के पास में। और वो घबरा गए, फिर वो पुत्र उनको आत्मज्ञान देने लग गए। यह चमड़ी और दमड़ी के मुँह में क्यों फंसे हो हाँ, कुछ आत्मा को सोचो। गंगानंद चक्रवर्ती उसका ब्राह्मण समाज को नरोत्तम ठाकुर को कुछ बोलना नहीं पड़ा, केवल गुरु के चरण में शरणागत हो गया। तो गुरु को गुरु सदगुरु क्या करते हैं हाँ, उनको समस्त शक्ति संचार कर देते हैं। गुरु में सामर्थ्य है, देखावा नहीं होता है। आप सदगुरु के आश्रय करेंगे तो समस्त सद्गुण और शक्ति वो अपने आप संचार कर देंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, गंगानंद चक्रवर्ती ने सारे समाज आया सबको बदल दिया। अब क्या हुआ, वो कहाँ गया माँ की पूजा, देवी की पूजा, और कहाँ गया नवरात्रि दशरात्रि हैं, सब कीर्तन में बस हर कीर्तन में मतवाला हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बड़े बड़े पंडित समाज वो दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से सब इकट्ठा कर लिया हैं, कि अब की बार इनसे पूछेंगे, ये जाति के कायस्थ थे, जब राजा थे राजपुत्र कृष्णानंद दत्त के पुत्र, बोले ये एक कायस्थ होकर के कैसे मंत्र दीक्षा दे सकता है और जगत को पागल बना दिया, उल्लू बना दिया, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, कैसे कर सकता है। इससे समस्त देशों से स्मार्टों को बुलाया, जब बुलाया तो नरोत्तम ठाकुर तो अपने हरि कीर्तन में अपने हरिकथा में लीन है, उनको तो होश ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब समय प्रचार में है। तो उनके जितने शिष्य लोग थे, देखा कि गंगा पार करके या भी प्रवेश करेंगे खेतुरी ग्राम में, गंगा के किनारे किनारे उन लोगों ने बाजार खोल दिया। कोई मिट्टी का बर्तन बेचने के लिए आ गया, कोई पान तंबाकू बेचने आ गया, कोई चावल दाल बेचने आ गया, कोई लकड़ी लेके बैठ गया हाँ, क्यों, ब्राह्मण लोग दूसरे हाथ का खाएगा नहीं, बर्तन लेगा मिट्टी का नया, लकड़ी लेगा, कांडा लेगा और खाना बनाएगा गंगा जल से, दूसरे का पानी भी नहीं छूता, तो स्मार्ट तो है, और पान जरूर चबाएगा और तंबाकू चाहिए चिलम हैं। अब वो शिष्यों ने सारी व्यवस्था कर ली। अब जब ये पंडित लोग आए और पंडित लोगों ने बाजार में गए सामान खरीदने, देखा तो सबका तिलक है और सबके माला है, और उनसे पूछा तुम्हारे ये बर्तन का कितना कीमत है, बोले कौन सा बर्तन का, ये मिट्टी का कोई कीमत है, मिट्टी तो धरित्री माँ का अपना शरीर है, धरित्री माँ ने जीव के कल्याण के लिए अपने को दे दिया है। बात शुरू कर दी, जो आए उसी को पकड़े और आत्मज्ञान देना शुरू कर दी। वो लोग बोले बाप रे, एक जो बाजार में जो सब्जी बेचने वाला है और चावल बेचने वाला है, बर्तन बेचने वाला, ये जो इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा विज्ञानी है, अब मिनट में हम लोगों को तो बदल दिया है, और तो इनके गुरु कैसा होगा। इसके बाद में क्या देखा, कीर्तन के टोले निकल रहा है, यहाँ इधर से भी कीर्तन आ रहा है, उधर से भी कीर्तन आ रहा है, उधर से भी कीर्तन आ रहा है, कोई भी बिना कीर्तन का वो सांस भी नहीं लेता है, सब लोग हरिनाम कर रहे हैं। देख करके ब्राह्मण लोगों का बोले ये हमारा पागड़ी हो उत खोलो, सादा भेष बना करके चुपचाप मेघना पद्मा पार करके चुपचाप चलो, यहाँ बिकेगी नहीं, यहाँ हमारे स्मार्ट रीति चलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। अब वो लोग सब भाग गए, एक भी नहीं रहा, जो दो एक रह गए थे उसके पीछा कर दिया, वो जहाज तक पहुंच गए। और जहाज जहाज चलाने वाला, बोट चलाने वाला, वो भी नरोत्तम ठाकुर जी की महिमा को जानते, इसलिए वो भी बोले यहाँ तुम्हारा दाल बिकेगी नहीं, ये चावल तुम्हारे हाट में नहीं चलेगी, वो तो सब चले गए। किंतु कुछ दिनों के बाद नरोत्तम ठाकुर अस्वस्थ लीला अभिनय करने लग गए, मानो हाथ पैर चले नहीं, एक जगह से हिले नहीं, हाँ। और शिष्य लोग आके रोने लग गए, गुरु जी कितना निंदा कर रहे हैं, कितना आलोचना कर रहे हैं कि देख ब्राह्मणों को शिष्य बनाया ना, देख पाप का फल कहाँ जाएगा, देख सबका हाँ खून पिया ना, और अपना बड़प्पन दिखाया, देख कितना भोग रहा है, सड़ रहा है, और गुरु हो गया घंटाल तो शिष्य तो चंडाल हो गया, गालियाँ कितना गंदा गंदा बोल रहा है। तो गुरु जी कृपा करो इन लोगों को, गुरु जी बोले एक काम कर, आरती के रथ बना, मतलब चार बजे आरती को ढोने के लिए मरे तो जैसे ले जाता है ना, तो ऐसे बना ले, बना लिया तो बोले कंधे में लो और कीर्तन शुरू करो। तो कीर्तन शुरू कर दिया, कम से 40-45 किलोमीटर कीर्तन करते करते शिष्य लोग जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, ओ गंगा जी तक। जब गंगा जी तक पहुँचे, गुरु जी बोले चलो अब स्नान करेंगे, गंगा जी स्नान किया, स्नान करके अब कहाँ फेंक दिया वो आरती का रथ, और हरि कीर्तन शुरू हुआ, नाचते हुए गाते हुए फिर 40 किलोमीटर जब चलने लगे, एकदम नए युवक, अब तो जितना पखंडी पाषंडी थे उन लोगों ने देखा और सुना, सबरे अब जो बाकी थे वो भी शरणागत हो गए। अब उन्होंने ये गौर पूर्णिमा होली के समय है, बोलते हैं होली का तात्पर्य क्या है, पवित्रता। होली अंग्रेजी शब्द नहीं है, केवल होली अंग्रेजी में बोलते हैं होली, किंतु हमारे देश का भाषा है धूल खेला, किंतु रज में रज में अभिषिक्त होना है, रज को शरीर में मलना है, किंतु किसके रज है, जो गुरु के चरण रज, उस दिन गुरु की पूजा होती है और गुरु के चरण में गुलाल अबीर देते हैं, पराग देके उसको लेके शर्माते लगाते हैं, सारा शरीर में मलते हैं, जिससे कि मेरे को माया छुए नहीं, पकड़े नहीं। गुरु सदगुरु और वैष्णव भक्त, नहीं तो ऐसे पिता प्रपितामह और बड़ों के उस दिन चरणों की पूजा होती है। कृष्ण ने स्वयं वर्षा में जाकर बृषभानुपुर में राधा जी की उपासना करके और राधा जी के चरणों के महाभार लेके अपने शर्माते आज शरीर में लगाया, और सब सखा लोग आए, और दूसरे दिन सखियाँ सब नंदगांव पहुँचे, वो लोग भी वहाँ से कृष्ण के पूजा करके और उनके चरणों के धूल लेकर के अपने होली अर्थात पवित्र की। तो ये होली लीला आज की नहीं है, सबसे पहले होली लीला सत्ययुग में जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने क्या किया, मंदिर बनाया चंदन के लकड़ी की, और बोला देख तेरे हरि आएंगे ना भजन करेगा, तो उनके हिरण्यकशिपु बहन होली क्या वो गोदी में लेके बैठ गई, बेटा तुमको मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारे हरि आए ना मुझे बोल देना। तो पूर्णिमा के रात को गोदी में लेके बैठ गई और हिरण्यकशिपु बोल दिया इसके हरि आएगा ना, चाहे तो लकड़ी लगा दे सूखे, जैसे हरि आएगा मैं तेरे को बोल दूंगी और मैं आग में जलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को वरदान है, अग्नि देवता मुझे छुएंगे नहीं, तो और आग में प्रहलाद भी जल जाएगा, हरि भी जल जाएगा, दोनों को जला देंगे, मैं जलूंगी नहीं। तो आग तो तैयार है, लकड़ी और सब सेनाएँ तैयार है, हरि भाग जाए तो काट काट के टुकड़ा करके फेंक देना, प्रहलाद भाग जाए तो उसको काट के फेंक देना आग में, सब तैयारी जल हो गया। अब होली क्या प्रहलाद की गोदी में लेकर बैठ गई, जब हरि आए मुझे बोल देना तू पूजा करो, हरि तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण होता है ना, सत्यनारायण वो नारायण प्रकट होता है उस दिन, तो तेरा तो सत्यनारायण है, तेरा मिथ्या नारायण नहीं है, जगत के लिए मिथ्या नारायण है, तेरे लिए सत्यनारायण है, नारायण आएंगे। अब नारायण को पूजा करने के लिए बोला, वो पूजा कर रहे हैं, इतने में क्या हुआ, उसको खुद को झुक किया गया, उसका सर लग गया लकड़ी में, मंदिर था लकड़ी क्या सर लग गया। हिरण्य कुछ में सोचा कि आवाज़ आ गई मेरा बहन की है, तो अब नारायण आ गया, लगाओ आग, आग लगा दी, चिंगारी फटने लग गया और सेनाएं भागने लग गए, पीछे पीछे आग जा रहा है। एक ने सोचा कि ये हरी जा रहा है, उसको काट के फेंक दिया, उसने सोचा वो जा रहा है हरी, एक मार काट मच गई, सबको काट काट कर आग में फेंक दिया और सारा रात भर लकड़ी डालते रहे। क्या हुआ, होली क्या जल के भस्म हो गई, बैठे रहे कौन, प्रहलाद। सुबह देवता लोग उतर करके आकर प्रहलाद के चरण धूली लेके शरीर में मला और खुश होकर पवित्र होकर के सब लोग गए, ऋषि महर्षि आए हैं, किंतु प्रहलाद वो बैठे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं, होली क्या तो जल गई। तो जब से ये प्रसंग चला कि भक्तों के जो चरण रज है उससे पवित्र कुछ है ही नहीं, उसमें समस्त शक्ति है सामर्थ्य है, इसे उन चरण रज को सर में मलो शरीर में मलो माया कभी पकड़ेगी नहीं। तो ये नरोत्तम ठाकुर जी ने इस होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है क्या किया, समस्त ब्रजमंडल क्षेत्रमंडल गोलमंडल सब निमंत्रण दिया, उसमें जानव माता थी और बड़े बड़े आचार्य लोग थे, समानंद प्रभु श्रीमद आचार्य और बड़े बड़े आचार्य को सबको बुलाया कि अभी कीर्तन शुरू हुआ, सुबह से लेकर कीर्तन शुरू हुआ, शाम हो गया क्या देखा, सबके सामने बस पंचतत्व आविर्भूत हुए और कीर्तन में मस्त नित्य चल रहा है और हजार गुना ने लाख गुना बढ़ गया। और जितने भक्त अभक्त आहूत अनाहूत रवाहूत, किसी ने सुन लिया, किसी ने पहले से ही निमंत्रण से आया, कोई अनिमंत्रित आया है, सारे दुनिया अगर कीर्तन में कीर्तन रस में मग्न हो गया है, ये भूल गए कैसा अमृत मिल रहा है। इतने में जो कीर्तन और चला क्या देखा, राधाकांत वल्लभीकांत और गौर विष्णु प्रिया ऐसे समस्त देवता लोग कृष्ण और परिकर लोग प्रकट हो गए। अब देखा क्या, अपने गुरु आ गए, लोकनाथ दास गोस्वामी जबकि नित्यल्या में वो भी आ गए। अब क्या देखा, रूप गोस्वामी सनातन सरल गोस्वामी आ गए, द्वादश गोपाल आ गए, अष्ट कुबेराज आ गए, सब 64 महान तो सब आ गए। ऐसा कीर्तन चला, उनके दर्शन करा करके समस्त रोगों को पवित्र कर दी, हृदय निर्मल कर दी और भगवत प्रेम में सराबोर कर दी। यह है गुरु सेवक, यदि सेवक के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, गुरु को प्रसन्न नहीं कर सके, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके और भगवान को दे नहीं सके, भगवत सेवा में किसी को नियुक्त नहीं कर सके, तो कैसे सद्गुरु हैं। हम लोग जब आश्रम में आए तो क्या दिखा, कुछ तो आता जाता नहीं है, जानता नहीं, समझता नहीं, तो गुरु ने बोला ये करना है, तो हम बोलते हम तो कुछ जानते नहीं, और तुमको जानने की जरूरत नहीं, मानने की जरूरत नहीं, तुम करना शुरू करो। हम तो है, सब तो है, मदद करेंगे, नहीं उन्होंने कह दिया भगवान सेवा स्वीकार करेंगे, कर लिया। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने वहाँ दिखाया, जाति पाति पूछिए ना कोई, जो हरि के वजह से हरि को हुए है। अब वो ब्राह्मण लोग का ये अभिमान था कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वेदज्ञ हैं, ये तो शूद्र हैं, ये क्या क्या भजन करता है और क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे। किंतु क्या हुआ, सब लोग देखा हार गए, शरणागत हो गए। बाद में कितने बड़े ब्राह्मण सब स्मार्ट तो सब दीक्षा ले ली और उस कीर्तन उत्सव के उस बार सबसे पहले होली फेस्टिवल अर्थात कीर्तन महोत्सव शुरू हुआ महाप्रभु के जन्मतिथि में, आविर्भाव तिथि में। वो कीर्तन के बाद जानव माता वहाँ पर और आचार्य श्रीनिवास वहाँ पुरोहित थे, अब क्या देखा, सब लोग तो प्रकट हुए और दर्शन दिए, सब तो चले गए, अब भक्त लोग रह गए। नरोत्तम ठाकुर जी को ठाकुर जी क्या कहते हैं, देख यहाँ से तुम्हारा जमींदारी है, राधा का लड़का था पहले से ही, तो तुम्हारा वो जो प्रजा है, प्रजा के यहाँ धान का गोला है, अर्थात जब धान आता है तो बड़े बड़े फूस के कुछ ऐसे बनाते हैं, घर जैसे बनाते हैं, उसके हम धान रख देते हैं, तो रख दिया, उसमें कोई नहीं जा सकता, कोई वर्षों से कोई नहीं जाता है धान के अंदर, और धान निकाल भी नहीं सकता, तो वहाँ बड़े बड़े सांप रह रहे हैं। तो नरोत्तम ठाकुर को बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा धान का गोला है, तुम्हारी प्रजा का, तो वहाँ पर मैं बहुत दिन से विराजमान हूँ, और अनंत देव मेरे पास है, और सब सांपों के द्वारा घिरे हुए जगह है, वहाँ कोई नहीं जाता है, तुम कीर्तन लेके चलो और मुझे वहाँ से लाओ। तो संकीर्तन के साथ गए और देखा जितने सांप था बड़े बड़े, जैसे हरिदास ठाकुर भजन करते थे, तो उनके गुफा के नीचे वो नागराज विराजमान है, कोई डर के मारे आ नहीं सकता, क्योंकि पहले मुसलमानों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया, तो अंत वो कहते मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ, हमारे भक्तों को कोई प्रहार करे, अत्याचार करे, मैं नहीं सहन कर सकता। अब हरिदास ठाकुर जहाँ भजन करते वहाँ कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि सांप का इतना विष है, जहर है, आते ही उनके शरीर आग लग जाती है, जल जाती है, इसके मारे डर के मारे कोई नहीं आता। अब हरिदास ठाकुर में भक्त लोग कहने लग गए, यदि आपके पास हम दर्शन करने आते हैं, किंतु नागराज विराजमान है, उनके जहर के मारे हमारा शरीर जलता है, फोफोला पड़ जाता है, तो हम कैसे दर्शन में आएंगे। हरिदास ठाकुर बोले नागराज को, भाई भक्त लोग यदि दुखी होते हैं आपको लेकर के, तो आपको या तो आप रहो या तो हम रहें। तो नागराज बोलते मैं जा रहा हूँ। तो रात के अंधेरे में देखा मणि जल रहा है, नागराज चले जा रहे हैं। ऐसे ही नरोत्तम ठाकुर क्या देख रहे हैं, धान के गोला के चारों तरफ विशाल विशाल सांप है, वो लोग धीरे धीरे करके सब चले गए। नरोत्तम ठाकुर धानों को हटाया, वहाँ देखा ओ उनके जो बल्लभीकांत राधाकांत विराजमान है, उनको गोदी में लेकर कीर्तन करते हुए आए हैं। धीरे धीरे आज भी बांग्लादेश भले ही स्वाधीन हो गया, किंतु खेतोरी ग्राम में वो सब मंदिर देवालय आज भी विराजमान है, सेवा आज भी चल रहा है, किंतु उनका जो प्रचार है, ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका का प्रकाशन किया, तो कहते यदि भजन करना चाहते हो एक बार ब्रह्म भक्ति चंद्रिका को पढ़ लो, गुरु किसे कहते हैं, गुरु पूजा कैसे होता है, गुरु भगवान के कैसे प्रिय हैं, परिकर हैं, और भगवान के साथ उनका संबंध कैसे कराते हैं, उन्होंने ग्रंथों में कीर्तनों के साथ प्रकाशन किया। इसके बाद उन्होंने भगवान के बाद प्रार्थना कैसे करना चाहिए, तरीका क्या है, इससे नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना मृत एक कीर्तन का ग्रंथ लिखा। उसमें बतलाया साधक पहले साधन करेगा तो कौन सा कीर्तन करेगा, कौन सा प्रार्थना करेगा, इसके बाद जब मध्यम अधिकार में आता है ये कैसे प्रार्थना करेगा, अब जब सिद्ध भूमिका में जाएगा कैसे प्रार्थना करेगा, हैं ये यदि नहीं जानता है तो जैसे कुछ दिन पहले सिनेमा वाले कीर्तन नोटों की निकाले हैं कि उल्टा पुल्टा कृष्ण की लीला का गंदा बना करके उल्टा पुल्टा गाना बना दिया, तो नरोत्तम ठाकुर इतना सख्त थे, यदि सिद्ध प्रणाली या साधकों का साधन और जो अनर्थग्रस्त जीवों का दुर्दशा, तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना मृत में एक एक चीज़ का सुष्ट रूप से वर्णन दिया कि कौन से अवस्था में कैसे कीर्तन करना चाहिए। शरणागति भक्तिम ठाकुर जी ने लिखा लिखा है कल्याण कर पर तुरु, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, एक एक करके सीखो। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने ये सब प्रकाशन किया था, और आज भी हमारे परंपरा को बोलते हैं कि नरोत्तम ठाकुर जी की ये परंपरा है, गौर परिवार है, किंतु संतों के तो कोई बेटा होता नहीं और उनका तो कोई शिष्य परंपरा चलता नहीं, भागवत परंपरा है, ये देखने से नहीं चलेगा उनका शिष्य ये है उनका शिष्य ये है, ऐसा नहीं होता। अब प्रभुपाद सहज ठाकुर आए, रूप गोस्वामी 500 साल पहले आए, यदि किसी ने रूप गोस्वामी का आश्रय ले ली तो उन्हें गलत किया, सदगुरु का आश्रय लिया तो गुरु के कृपा से उनको रूप गोस्वामी में ममता हो गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गया। ऐसे ही किसी को प्रभुपाद सहज ठाकुर जी में श्रद्धा हो गया। तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं गुरु आश्रय करने का मतलब है गुरु परंपरा के प्रति अपने आप श्रद्धा उदित होगा, और यदि नहीं हुआ तो गुरु आश्रय नहीं किया। गुरु आश्रय किया और जा रहा है जहन्नम में उल्टा पुल्टा औरों की प्रतिष्ठा औरों की गुणगान करता है, तो इसका मतलब है अभी गुरुचरण आश्रय नहीं किया। आश्रय किया तो निश्चित भागवत परंपरा में उनका श्रद्धा उदित हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते, बहुत देर हो गया, शाम को हम लोग उनके महिमा आगे की और जो कुछ सुनेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि।